डैनियल की पुस्तक संख्या 39, भविष्य सूचक ताने बाने का अनावरण, विलियम मिलर का स्वप्न और अंतिम दिनों में आधारभूत सत्यों की पुनर्स्थापना।
हम अंतिम दिनों में विलियम मिलर के स्वप्न के भविष्य सूचक अनुप्रयोग पर विचार कर रहे हैं, जहां सभी भविष्यवाणियां अपनी पूर्ण पूर्ति पाती हैं। मिलर का स्वप्न एडवेंटवाद के उन मौलिक सत्यों की खोज, स्थापना, अस्वीकृति, दफन और पुनर्स्थापना की पहचान करता है, जिन्हें मिलर की सेवकाई के माध्यम से एकत्र किया गया था। वे मौलिक सत्य उन सत्यों का प्रतिनिधित्व करते थे जिनकी मोहर 1790 में खोली गई थी। वे सत्य उलाई नदी के दर्शन द्वारा दर्शाए गए हैं। अर्ली राइटिंग्स नामक पुस्तक में अभिलेखित मिलर का स्वप्न उनका दूसरा स्वप्न था और मिलर के उस स्वप्न का पूर्व रूप नबुकदनेस्सर का दूसरा स्वप्न था, ठीक वैसे ही जैसे नबुकदनेस्सर मिलर के पूर्व रूप थे। पूर्ववर्ती लेखों ने ये दिखाया है कि पशु का हृदय पाकर 7 काल तक जीने वाले नबुकदनेस्सर के जीवन का समापन प्रतीकात्मक रूप से 1999 में हुआ। तब उसका राज्य पुनः बहाल कर दिया गया और पहली बार नबुकदनेस्सर एक पूर्णतः परिवर्तित व्यक्ति का प्रतीक बना। अंत के समय के परिप्रेक्ष्य में 1999 में उसने बुद्धिमानों का प्रतिनिधित्व किया। हमने ये भी पहचाना है कि बाबुल के प्रथम राजा के रूप में नबुकदनेस्सर पर 7 काल का जो न्याय हुआ वो बाबुल के अंतिम राजा बेलशज्जर पर हुए 2520 मेने मेने टेकेल उफारसिन के न्याय का प्रतिरूप था।
बाबुल के अंतिम शासक के पास भी, जैसे कि प्रतीक रूप में उसके प्रथम शासक के पास दिव्य प्रहरी का ये दंडादेश आ चुका था, हे राजा, तुझसे ये कहा जाता है, राज्य तुझसे चला गया है। दानियल 4:31, भविष्यद् वक्ताओं और राजाओं 5:6-7 दोनों।
सिस्टर व्हाइट ने अपने न्याय की घनी में बेलशज्जर को मूर्ख राजा कहा। नबुकदनेस्सर की न्याय की घड़ी के समापन पर वो बुद्धिमान राजा का प्रतिनिधित्व करता है, क्योंकि वो 7 काल के न्याय से लाभान्वित हुआ और बेलशज्जर इतिहास जानते हुए भी लाभ उठाने से इनकार कर दिया।
परंतु बेलशज्जर का मनोरंजन और आत्ममहिमा प्रदर्शन का प्रेम उन शिक्षाओं को मिटा दिया जिन्हें उसे कभी नहीं भूलना चाहिए था, और उसने वैसे ही पाप किए जिनके कारण नबुकदनेस्सर पर विशेष न्याय आए थे। उसने उसे कृपापूर्वक दिए गए अवसरों को व्यर्थ गंवा दिया और सत्य से परिचित होने के लिए अपनी पहुंच में जो अवसर थे उनका उपयोग करने की उपेक्षा की। मुझे उद्धार पाने के लिए क्या करना चाहिए, ये वो प्रश्न था जिसे वो महान परंतु मूर्ख राजा उदासीनता से नजरअंदाज कर गया। बाइबलिको 25 अप्रैल 1898।
नबुकदनेस्सर सन 1798 के ज्ञानी का प्रतीक है जो अंत के समय ज्ञान की वृद्धि को समझते हैं।
उसके होंठों से उसकी गर्व भरी डींग अभी निकली ही थी कि स्वर्ग से एक स्वर ने उसे बता दिया कि परमेश्वर द्वारा नियत न्याय का समय आ पहुंचा है। क्षणभर में उसकी बुद्धि उससे छीन ली गई और वो पशु के समान हो गया। 7 वर्षों तक वो इसी प्रकार अपमानित रहा। इस अवधि के अंत में उसकी बुद्धि उसे फिर लौटा दी गई और तब विनम्र होकर स्वर्ग के महान परमेश्वर की ओर दृष्टि उठाकर उसने इस ताड़ना में परमेश्वर के दिव्य हाथ को पहचाना और वो फिर अपने सिंहासन पर बहाल कर दिया गया।
एक सार्वजनिक घोषणा में राजा नबुकदनेस्सर ने अपने दोष को और अपनी पुनर्स्थापना में परमेश्वर की महान दया को स्वीकार किया। पवित्र इतिहास में दर्ज उसके जीवन का ये अंतिम कार्य था। रिव्यू एंड हेराल्ड 1 फरवरी 1881।
नबुकदनेस्सर के 7 समय के अंत में उसने एक सार्वजनिक घोषणा की जिसमें एक सार्वजनिक स्वीकारोक्ति भी सम्मिलित थी। मिलर नबुकदनेस्सर की तरह 1798 में उन ज्ञानी का प्रतीका है जो अंत के समय ज्ञान में वृद्धि को समझते हैं। दोनों के 2 स्वप्न थे और दोनों के क्रमशः दूसरे स्वप्न प्रतीकात्मक रूप से 7 समय की पहचान कराते हैं। पिछले लेखों में दिखाया गया है कि 7 समय एक संक्रमण बिंदु को चिह्नित करता है। 1798 में नबुकदनेस्सर ने अपनी अहंकारी दशा से ज्ञानियों की दशा में परिवर्तन को चिह्नित किया। इसमें उसकी सार्वजनिक स्वीकारोक्ति शामिल थी। 1798 बाइबल की भविष्यवाणी के 5वें और 6ठे राज्यों के बीच संक्रमण बिंदु भी था। इसने पहले स्वर्गदूत के आगमन को भी चिह्नित किया और इस प्रकार एक नई व्यवस्था का संकेत दिया
क्योंकि आने वाले न्याय की चेतावनी तब तक नहीं दी जा सकती थी जब तक बाइबल की भविष्यवाणी का पांचवा राज्य अपना घातक घाव प्राप्त न कर ले।
ये संदेश स्वयं इस बात पर प्रकाश डालता है कि ये आंदोलन कब होना है। इसे अनंत सुसमाचार का एक भाग बताया गया है और ये न्याय के उद्घाटन की घोषणा करता है। उद्धार का संदेश सब युगों में प्रचारित किया गया है, परंतु ये संदेश सुसमाचार का ऐसा भाग है जिसे केवल अंत के दिनों में ही घोषित किया जा सकता था, क्योंकि केवल तब ये सत्य होता कि न्याय की घड़ी आ पहुंची है। भविष्यवाणियां ऐसी घटनाओं की एक श्रृंखला प्रस्तुत करती हैं जो न्याय के उद्घाटन तक ले जाती है। ये विशेष रूप से दानियल की पुस्तक के संबंध में सत्य है, परंतु उसकी भविष्यवाणी के उस भाग को जो अंत के दिनों से संबंधित था, दानियल को अंत के समय तक बंद करके मुहर बंद करने की आज्ञा दी गई। जब तक हम इस समय तक न पहुंचे, तब तक इन भविष्यवाणियों की पूर्ति के आधार पर न्याय के विषय में कोई संदेश घोषित नहीं किया जा सकता था। परंतु अंत के समय में भविष्यद्वक्ता कहता है, बहुत लोग इधर उधर दौड़ेंगे और ज्ञान बढ़ेगा। दानियल 12:4।
प्रेरित पौलुस ने कलीसिया को चेताया कि वे अपने समय में मसीह के आगमन की प्रतीक्षा न करें। वह दिन न आएगा, वह कहता है, जब तक पहले धर्म त्याग न हो जाए और पाप का मनुष्य प्रकट न किया जाए। 2 थिस्सलुनीकियों 2:3। महान धर्म त्याग के बाद और पाप का मनुष्य के दीर्घकालीन राज्य के पश्चात ही हम अपने प्रभु के आगमन की आशा कर सकते हैं। पाप का मनुष्य, जिसे अधर्म का भेद, नाश का पुत्र और वह अधर्मी भी कहा गया है, पापाई सत्ता का प्रतिनिधित्व करता है जो भविष्यवाणी के अनुसार 2660 वर्षों तक अपनी प्रधानता बनाए रखने वाली थी। ये अवधि 1798 में समाप्त हुई। मसीह का आगमन उस समय से पहले नहीं हो सकता था। पौलुस अपनी इस चेतावनी से मसीही युग की पूरी अवधि को 1798 तक आच्छादित कर देता है। उसी समय के बाद के काल में ही मसीह के दूसरे आगमन का संदेश प्रचारित किया जाना है।
ऐसा संदेश पूर्व युगों में कभी नहीं दिया गया। जैसा कि हमने देखा है, पौलुस ने इसका प्रचार नहीं किया। उन्होंने अपने भाइयों का ध्यान प्रभु के आगमन के लिए उस समय के बहुत दूर के भविष्य की ओर दिलाया। सुधारकों ने भी इसे घोषित नहीं किया। मार्टिन लूथर ने न्याय को अपने समय से लगभग 300 वर्ष आगे भविष्य में ठहराया, लेकिन 1798 से डेनियल की पुस्तक की मुहर खुल गई है। भविष्यवाणियों का ज्ञान बढ़ा है और बहुतों ने न्याय के निकट होने के गंभीर संदेश का प्रचार किया है। महान विवाद 3055।
1798 में उद्धार के कार्य का एक नया युग आरंभ हुआ और उस नए युग ने ये चेतावनी दी कि 1844 में एक और युग आरंभ होगा। उस युग आर परिवर्तन के समय एक द्वार बंद किया जाएगा और एक द्वार खोला जाएगा।
और फिलाडेल्फिया की कलीसिया के दूत को लिख, ये बातें वो कहता है जो पवित्र है, जो सत्य है, जिसके पास दाऊद की कुंजी है, जो खोलता है और जिसे कोई मनुष्य बंद नहीं कर सकता, और जो बंद करता है और जिसे कोई मनुष्य खोल नहीं सकता। मैं तेरे कामों को जानता हूँ। देख, मैंने तेरे सामने एक खुला द्वार रख दिया है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता, क्योंकि तेरे पास थोड़ी शक्ति है और तूने मेरे वचन को रखा है और मेरे नाम से इनकार नहीं किया। प्रकाशित वाक्य 3:7-8।
किसी द्वार का खुलना एक नए काल की शुरुआत को दर्शाता है। 1798 में पहले प्रकोप के अंत पर राज्यों और संदेश दोनों में एक काल परिवर्तन हुआ जो 1727 ईसा पूर्व से सताइतिक तक संपन्न हुआ। 1844 में अंतिम प्रकोप के अंत पर एक और काल परिवर्तन हुआ जो 27 ईसा पूर्व से 1844 तक संपन्न हुआ। 1798 में पहले स्वर्गदूत के संदेश का काल, जो आने वाले न्याय की चेतावनी देता था, आ पहुंचा था। अंत के समय में नबूकदनी, सर और मिलर दोनों को ज्ञानी के रूप में दर्शाया गया है, जब द्वार पहले स्वर्गदूत के संदेश के आंतरिक काल के लिए और बाह्य रूप से समुद्र के पशु से पृथ्वी के पशु में काल परिवर्तन के लिए खोला गया। जब 22 अक्टूबर 1844 को महापवित्र खान का द्वार खोला गया, तब पहले स्वर्गदूत के संदेश का काल पूरा हुआ और तीसरे स्वर्गदूत का काल तथा अन्वेषण न्याय आ पहुंचा। मिलर का दूसरा स्वप्न 1790 में एक द्वार खोले जाने से आरंभ होता है और वो उस संक्रमण काल में समाप्त होता है जब दो गवाह हों जिन्हें आधी रात की पुकार का संदेश घोषित करने के लिए फिर से जीवित किया गया के दौरान एक द्वार खोला गया। भविष्यवाणी के परिप्रेक्ष्य में नबूकदनेस्सर और मिलर दोनों ने 1790 में समुद्र के पशु के राज्य से पृथ्वी के पशु के राज्य में हुए संक्रमण का प्रतिनिधित्व किया। वे दोनों 1846 में अन्वेषण न्याय के निकट होने तथा उसके आगमन की घोषणा का भी प्रतिनिधित्व किया करते हैं। 1790 और 1846 उसके लोगों के विरुद्ध परमेश्वर के प्रथम और अंतिम कोप के निष्कर्ष का द्योतक हैं, जो सात समय की अवधि में, जैसा कि लव्यस्ताह अध्याय 26 में प्रतिपादित है, पूर्ण हुए। 1790 से 1846 तक के 46 वर्ष आत्मिक मंदिर के निर्माण का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिसमें वाचा का दूत 22 अक्टूबर 1846 को अचानक आ पहुंचा, जब मसीह पवित्र स्थान से अति पवित्र स्थान में स्थानांतरित हुआ। 1719 और 844 उन संक्रमणों एक से अधिक की ओर संकेत करते हैं जो सात समय द्वारा चिन्हित हैं। 1856 में मिलेराइट फिलाडेल्फियन एडवेंटिज्म से मिलेराइट लाउडिसियन एडवेंटिज्म में होने वाला संक्रमण भी सात समय के ज्ञान में वृद्धि से चिन्हित था, जिसे बाद में 1863 में अस्वीकार कर दिया गया। 1719 में दानियल की पुस्तक से ज्ञान में वृद्धि हुई थी, जिसमें वही सात समय लव्य व्यवस्था 26 के शामिल थे, जिन्हें मिलेराइट फिलाडेल्फियन एडवेंटिज्म के अंत में अस्वीकार किया जाना था। पहले स्वर्गदूत टेल एलुएशन ने आंदोलन का फिलाडेल्फिया से लाउदीकिया की ओर संक्रमण 1856 से 1863 के तक के सात वर्षों द्वारा दर्शाया गया था। लाउदीकियाई संदेश 1856 में आया और सात वर्षों तक सात समय का वो नया प्रकाश जिसकी मोहर खुल चुकी थी एक त्रिचरणीय परीक्षण प्रक्रिया उत्पन्न करता रहा, जिसमें 1863 में एडवेंटवाद असफल हो गया। सात समय के प्रकाश को या तो स्वीकार करने या अस्वीकार करने के लिए सात वर्ष दिए गए थे। मिलराइट फिलाडेल्फियाई एडवेंटवाद के आंदोलन से मिलराइट लाउदीकियाई एडवेंटवाद के आंदोलन में हुआ संक्रमण अंत में होने वाले क्रम के उलट का प्रतिरूप है, अर्थात तीसरे स्वर्गदूत के लाउदीकियाई आंदोलन से तीसरे स्वर्गदूत के फिलाडेल्फियाई आंदोलन में संक्रमण। यशायाह की 65 वर्षों की भविष्यवाणी इसराइल के उत्तरी और फिर दक्षिणी राज्यों के विरुद्ध परमेश्वर के पहले और अंतिम क्रोध के आरंभ को चिन्हित करती है।
क्योंकि आराम का सिर दमिश्क है और दमिश्क का सिर रेजीन है, और 65 वर्षों के भीतर एप्रैम ऐसा टूट जाएगा कि वो एक जाति ना रहे। यशाया 7:7-8।
यशाया की 65 वर्षों की भविष्यवाणी 705 ईसा पूर्व में दी गई थी, और 65 वर्षों के भीतर उत्तरी राज्य समाप्त हो जाएगा। 705 ईसा पूर्व के 19 वर्ष बाद 733 ईसा पूर्व में उत्तरी राज्य को अश्शूर द्वारा बंदी बनाकर ले जाया गया। 65 वर्षों की समाप्ति पर 747 ईसा पूर्व में दक्षिणी राज्य पर प्रकोप आरंभ हुआ, जब मशेह को बाबुलियों ने बंदी बना लिया। अतः 65 वर्ष इस प्रकार दर्शाते हैं, उत्तरी राज्य की पहली बंधुआई तक 19 वर्ष और फिर मशेह की बंधुआई तक आगे के 46 वर्ष। उन भविष्यवाणियों की अपनी अपनी पूर्ति 1799, 1848 और 1863 में हुई। 1799 में पहले स्वर्गदूत के आगमन के साथ उद्धार के संदेश में एक आंतरिक संक्रमण हुआ, और बाइबल की भविष्यवाणियों के साम्राज्यों में भी एक बाहरी संक्रमण हुआ। 1848 में पवित्र स्थान का द्वार बंद कर दिया गया, और तीसरे स्वर्गदूत के आगमन के साथ अन्वेषण न्याय प्रारंभ हुआ। इसी के साथ उद्धार के संदेश में एक आंतरिक संक्रमण हुआ। 1863 में एक बाहरी परिवर्तन हुआ, जब पृथ्वी से उठने वाले पशु के दोनों सींग दो वर्गों में विभाजित हो गए। गणतंत्रवादी सींग दो राजनीतिक दलों में विभाजित हो गया, जो उसके बाद से पृथ्वी के पशु के इतिहास पर हावी रहने वाले थे। प्रोटेस्टेंट सींग दो धर्मत्यागी रूपों में विभाजित हो गया, एक दल जो स्वयं को प्रोटेस्टेंट बताता था और दावा करता था कि वो सातवें दिन के सप्त का पालन करता है, और एक अन्य वर्ग जो स्वयं को प्रोटेस्टेंट तो कहता था पर उपासना के लिए अपने चुने हुए दिन के रूप में सूर्य के दिन को बनाए रखता था। उस इतिहास में अंधकार युग से उभरा प्रोटेस्टेंट सिंह 11 अगस्त 1840 से 22 अक्टूबर 1884 तक परखा गया और वो परीक्षण में असफल रहा तथा रविवार पालन करने वाले प्रोटेस्टेंट लोगों से रविवार पालन करने वाले धर्मत्यागी प्रोटेस्टेंट लोगों में परिवर्तित हो गया। 1844 में स्थापित और पहचाने गए सच्चे प्रोटेस्टेंट सिंह के इतिहास में 1856 से 1863 तक एक परख की प्रक्रिया हुई। तब सच्चा सप्त पालन करने वाला प्रोटेस्टेंट सिंह फिलाडेल्फिया से लाउदीकिया की ओर और सच्चे सप्त पालक प्रोटेस्टेंट लोगों से सप्त पालक धर्मत्यागी प्रोटेस्टेंट सिंह की ओर दोनों ही रूपों में संक्रमण कर गया। सात समय 1796 और 1863 से संबद्ध है। सात समय एक ऐसा प्रतीक है जो संक्रमण बिंदु से संबद्ध है और ये सत्य कई साक्ष्यों के आधार पर स्थापित है। 27 अर्क सचनवह के विषय में ज्ञान में वृद्धि हुई क्योंकि मिलर ने जो सबसे पहली समय संबंधी भविष्यवाणी खोजी वही सत्य थी। 1863 तक उस सत्य को अस्वीकार कर दिया गया था और इस प्रकार यशाया अध्याय 7 में वर्णित भविष्यवाणी के 65 वर्षों की समाप्ति अवधि का निष्कर्ष चिह्नित हुआ। पूर्ण डुवन 23 शतवर्षीय भविष्यवाणी के आरंभ और अंत दोनों में 65-65 वर्षों का एक कालखंड है और ये उल्टे प्रतिबिंब दर्पण सदृह रूप में व्यवस्थित है। समापन के 65 वर्षीय कालखंड की शुरुआत 1798 का प्रतिरूप 785 ईसा पूर्व में जब ये भविष्यवाणी दी गई थी आरंभ के 65 वर्षीय कालखंड की शुरुआत थी। तब 7 बार के विषय में ज्ञान में वृद्धि हुई जिसे बुद्धिमान मिलराइट्स ने समझा और प्रचारित किया। समापन के 65 वर्षों के अंत में 1863 में इसी सत्य पर ज्ञान में एक और वृद्धि हुई जिसे अंततः सच्चे प्रोटेस्टेंट सिंह के नव ताजपोश याजकों ने अस्वीकार कर दिया।
मेरी प्रजा ज्ञान के अभाव से नाश हो गई है क्योंकि तूने ज्ञान को तुच्छ जाना है, इसलिए मैं भी तुझे तुच्छ जानूंगा कि तू मेरे लिए याजक न ठहरे। और क्योंकि तू अपने परमेश्वर की व्यवस्था को भूल गया है, इसलिए मैं भी तेरे बालकों को भूल जाऊंगा। होशे 4:6।
जब दानियल की पुस्तक की मुहर खुलती तब ज्ञान में जो वृद्धि होती है वो 7 समय से जुड़ी हुई है। इसलिए 7 समय न केवल परिवर्तन के एक मोड़ का प्रतीक है बल्कि भविष्यवाणी के संदेश की मुहर खुलने का भी प्रतीक है। 18 जुलाई 2021 को पहली निराशा के साथ एक और परिवर्तन शुरू हुआ जिसने प्रतीक्षा का समय आरंभ किया और प्रकाशित वाक्य के 11वें अध्याय में वर्णित सदोम और मिस्र के महान नगर की सड़क पर 2 गवाहों के मृत पड़े रहने के 3.5 दिनों की शुरुआत को चिह्नित किया। 18 जुलाई 2020 3.5 प्रतीकात्मक दिनों 1-7 काल की शुरुआत को चिह्नित करता है जिसका चित्रण 1856 से 1863 तक के इतिहास द्वारा किया गया था। दोनों अभियां 7 काल के प्रतीक हैं। दोनों अभियां एक व्यवस्था परिवर्तन एक संक्रमण को चिह्नित करती हैं। दोनों अभियां 7 काल से संबंधित ज्ञान में वृद्धि का प्रतिनिधित्व करती हैं। जब बाबुल के राज्य से मादी फारस के राज्य में संक्रमण हो रहा था उसी काल में दानियल ने लैवीय व्यवस्था अध्याय 26 की प्रार्थना की। इस प्रकार उसने लैवीय व्यवस्था अध्याय 26 की प्रार्थना को अंतिम दिनों के संक्रमण का एक मार्ग चिन्ह के रूप में पहचाना। मिलर के स्वप्न में विखराव शब्द के 7 बार प्रयोग के अंत में मिलर रोता भी है और प्रार्थना भी करता है। वो रोना उस क्षण को चिन्हित करता है जब यहूदा के गोत्र का सिंह धूल झाड़े वाला व्यक्ति एक मुहरबंद संदेश की मुहर खोलता है। मिलर की प्रार्थना दानियल की लैव्य व्यवस्था 26 वाली प्रार्थना का संकेत देती है जो 7 समय से संबंधित है और ये तब घटित होती है जब मिलर के स्वप्न में द्वार और खिड़कियां खोले गए थे। परंतु 9वें अध्याय में दानियल की प्रार्थना 2 अध्याय में दानियल की प्रार्थना के भी अनुरूप है। ये नबुकदनेस्सर की 7 समय के अंत में की गई स्वीकारोक्ति की प्रार्थना के साथ भी मेल खाती है।
इस प्रकार मिलर की प्रार्थना का प्रतिनिधित्व लेव्य व्यवस्था अध्याय 26 की प्रार्थना द्वारा किया गया, जो स्वीकारोक्ति की एक सार्वजनिक प्रार्थना थी और अंतिम भविष्यवाणी संबंधी रहस्य की मुहर खुलवाने के लिए एक विनती भी थी, क्योंकि सारी भविष्यवाणी अंतिम दिनों को दर्शाती है। अतः दानियल अध्याय 2 का रहस्य उस अंतिम रहस्य का प्रतिनिधित्व करता है जिसे खोला जाना है। अपने सपने में मिलर की प्रार्थना उसके कमरे के रत्नों के साथ हुए घृणित कार्यों के विषय में चिंता और धर्मी रोष की प्रार्थना थी। उसकी चिंता का चित्रण यहेजकेल अध्याय 9 में उन लोगों द्वारा होता है जो 144,000 की मुहरबंदी के समय आहे भरते और रोते हैं। मिलर ने देखा कि सच्चाइयों को नकली सिद्धांतों द्वारा क्रमशः दफनाया जा रहा था और अंततः बात यहां तक पहुंच गई कि ताबूत स्वयं बाइबल को नष्ट कर दिया गया। मिलर के ताबूत का विनाश एडवेंटिज्म की तीसरी पीढ़ी में हुआ, जब किंग जेम्स बाइबल को बाइबल के आधुनिक भ्रष्ट कैथोलिक आधारित संस्करणों के पक्ष में किनारे करने के लिए एक सुनियोजित आंदोलन चलाया गया। मिलर रोए, फिर प्रार्थना की और तुरंत एक दरवाजा खुला और सब लोग बाहर निकल गए। फिर धूल झाड़ने वाला व्यक्ति यहूदा के गोत्र का सिंह अंदर आया, खिड़कियां खोली और सफाई करने लगा। तब मिलर ने बिखरे हुए रत्नों के बारे में अपनी चिंता व्यक्त की और धूल झाड़ने वाले व्यक्ति ने वादा किया कि वो रत्नों का ध्यान रखेगा। धूल झाड़ने वाले व्यक्ति के सफाई अभियान की हलचल मिलर ने एक क्षण के लिए आंखें बंद कर ली और जब उन्होंने आंखें खोली तो कूड़ा करकट गायब था। रत्न कमरे में इधर उधर बिखरे हुए थे और तब धूल झाड़ने वाले व्यक्ति ने बड़ी पेटी मेज पर रखी, रत्नों को समेटा और उन्हें पेटी में डाल दिया और कहा, आओ और देखो, आओ और देखो। ये अभिव्यक्ति इस बात का प्रतीक है कि किसी सत्य की मुहर अभी अभी खुली है। मिलर के लिए जो सत्य अनावृत होता है वो अंतिम सत्य है, क्योंकि अगली घटना चिल्लाहट पर मिलर का जाग उठना है जो जोरदार पुकार का प्रतिनिधित्व करती है। मिलरवादियों के इतिहास में आधी रात की पुकार का संदेश पाने वाले आखिरी व्यक्ति मिलर ही थे और सपने में जो चिल्लाहट उसे जगा देती है उससे ठीक पहले उसने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। बाइबल में केवल एक ही अंश है जो एक पल और आंखें का उल्लेख करता है और वो प्रथम पुनरुत्थान की पहचान करता है।
देखो, मैं तुम्हें एक भेद बताता हूँ, हम सब नहीं सोएंगे परंतु हम सब बदल दिए जाएंगे, एक क्षण में, पलक झपकते ही, अंतिम तुरही के समय, क्योंकि तुरही बजेगी और मरे हुए अविनाशी रूप में उठाए जाएंगे और हम बदल दिए जाएंगे, क्योंकि इस नाशमान को अविनाशीत्व धारण करना चाहिए और इस मर्त्य को अमरत्व धारण करना चाहिए। 1 कुरिन्थियों 15:51-3।
तीसरे स्वर्गदूत के लाओदिकियाई आंदोलन से तीसरे स्वर्गदूत के फिलाडेल्फियाई आंदोलन में होने वाले संक्रमण के इतिहास में, जैसा कि प्रकाशित वाक्य के 11वें अध्याय में दर्शाया गया है, मिलर आधी रात की पुकार का संदेश ग्रहण करने वाली बुद्धिमान कुवारियों में सबसे अंतिम का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसे सबसे पहले ग्रहण करने वाले सबसे अधिक आध्यात्मिक थे।
यह वो मध्य रात्रि का आह्वान था जो दूसरे स्वर्गदूत के संदेश को सामर्थ्य देने वाला था, निरुत्साहित संतों को जागृत करने और उनके आगे के महान कार्य के लिए उन्हें तैयार करने हेतु स्वर्ग से स्वर्गदूत भेजे गए। सबसे प्रतिभाशाली लोग इस संदेश को सबसे पहले प्राप्त करने वाले नहीं थे, स्वर्गदूत दीन और समर्पित जनों के पास भेजे गए और उन्हें ये पुकार लगाने के लिए विवश किया, देखो दूल्हा आ रहा है, उससे मिलने के लिए बाहर निकलो। जिन्हें ये पुकार सौंपी गई थी उन्होंने शीघ्रता की और पवित्र आत्मा की शक्ति से संदेश घोषित किया और अपने निरुत्साहित भाइयों को जागृत किया। ये कार्य मनुष्यों की बुद्धि और शिक्षा पर आधारित नहीं था, बल्कि परमेश्वर की शक्ति पर, और उसके संत जिन्होंने ये पुकार सुनी वे इसका विरोध नहीं कर सके। सबसे आत्मिक लोगों ने ये संदेश पहले प्राप्त किया और जो पहले इस कार्य में अग्रणी थे वे इसे प्राप्त करने और इस पुकार को और प्रबल करने में सबसे अंत में आए। देखो दूल्हा आ रहा है, उससे मिलने के लिए बाहर निकलो। प्रारंभिक लेखन 223।
प्रकाशित वाक्य अध्याय 11 के 3.5 प्रतीकात्मक दिनों के अंत में यहेजकेल अध्याय 37 में दर्शाए गए दो संदेशों में से पहला घोषित किया जाता है। पहला संदेश मृत और बिखरी हुई हड्डियों को इकट्ठा बेत ही करता है, परंतु वे अभी भी मृत ही रहती हैं। ये संदेश उस आवाज द्वारा घोषित किया गया जो मरुभूमि में पुकारती थी। इससे ये स्पष्ट होता है कि यहेजकेल का संदेश उन 3.5 प्रतीकात्मक दिनों के समाप्त होने से पहले ही आरंभ हो जाता है। वे 3.5 दिन मरुभूमि का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसी मरुभूमि से ये संदेश घोषित किया जाता है। ये मरुभूमि 7 समय का भी एक प्रतीक है जो एक संक्रमण और एक मुहर खुलने की प्रक्रिया को चिन्हित करता है, जो एक परीक्षण प्रक्रिया का परिचय कराता है। लेकिन ये घोषित किताब उन्हें संदेश का क्रमिक विकास होता है और उसका क्रमिक ग्रहण भी, जैसा कि मिलर राइट इतिहास के मध्य रात्रि के आह्वान से स्पष्ट होता है। सबसे आध्यात्मिक लोग वे थे जिन्होंने जंगल में पुकारने वाले की आवाज का संदेश सबसे पहले ग्रहण किया, और एडवेंटिज्म के इतिहासकार 22 अक्टूबर 1854 से कुछ ही दिन पहले विलियम मिलर द्वारा लिखे गए एक पत्र की ओर संकेत करते हैं, जहां जैसे 9 दिन हो गए मिलर ये गवाही देते हैं कि अंततः उन्होंने सैमुअल स्नो के मध्यरात्रि के आह्वान के संदेश को समझा और स्वीकार किया।
प्रिय भाई हाइम्स, मैं 7वें महीने में ऐसी महिमा देखता हूँ जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। यद्यपि प्रभु ने मुझे 1.5 वर्ष पहले 7वें महीने की प्रतिरूपात्मक महत्ता दिखाई थी, फिर भी मैं प्रतिरूपों के बल को नहीं समझ पाया था। अब प्रभु का नाम धन्य हो, मैं धर्मशास्त्र में एक सौंदर्य, एक सामंजस्य और एक संगति देखता हूँ जिसके लिए मैं लंबे समय से प्रार्थना करता रहा हूँ, पर आज तक उसे देख नहीं पाया था। हे मेरे प्राण, प्रभु का धन्यवाद कर। मेरी आँखें खोलने में साधन बनने के कारण भाई स्नो, भाई स्टोर्स और अन्य धन्य हों, मैं लगभग घर पहुंच गया हूँ। महिमा 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 महिमा। विलियम मिलर, साइंस ऑफ द टाइम्स, 16 अक्टूबर 1844।
मिलर के स्वप्न सैयद में प्रस्तुत आधी रात की पुकार के इतिहास की पुनरावृत्ति में मिलर ने एक क्षण के लिए अपनी आँखें बंद कर ली। इस प्रकार एक पल में आँख झपकते ही आखिरी तुरही पर, क्योंकि तुरही बजेगी और मरे हुए जी उठेंगे। मिलर के स्वप्न में वो स्वयं को आधी रात की पुकार का संदेश पाने वालों में सबसे अंत में आने वाले के रूप में प्रस्तुत करता है, जैसा उसके अपने इतिहास में भी हुआ। वो उन लोगों का प्रतिनिधित्व करता है जो अंततः उस संदेश को स्वीकार करते हैं, ठीक उससे पहले जब धूल झाड़ने वाला व्यक्ति बिखरे हुए रत्नों को समेट कर उन्हें बड़े संदूक में डाल देता है। प्रकाशित वाक्य के अध्याय 11 में जो लोग यहेजकेल के दूसरे संदेश, जो इस्लाम की 4 हवाओं का संदेश है और जो मुहरबंदी का संदेश भी है, को सबसे अंत में स्वीकार करते हैं, वे ऐसा 7 तुरहियों में से आखिरी अर्थात तीसरी हाय की तुरही बजने से ठीक पहले करते हैं। एक पल में आँख झपकते ही आखिरी तुरही पर, क्योंकि तुरही फूंकी जाएगी और मरे हुए बसाए अविनाशी अवस्था में जी उठेंगे और हम बदल दिए जाएंगे। 1 कुरिन्थियों 15:72। ये अनुच्छेद उस प्रथम पुनरुत्थान की पहचान करता है जो दूसरे आगमन पर होता है, परंतु प्रकाशित वाक्य के 11वें अध्याय के महान भूकंप की घड़ी में मृत सूखी हड्डियों 2 साक्षी का एक पुनरुत्थान भी होता है। उस भूकंप की घड़ी में 7 तुरहियों में से अंतिम तुरही बजती है और जो मृत साक्षी सड़क पर थे उन्हें फिर से जीवन में लाया जाता है, लाओदिकिया वासी के रूप में नहीं बल्कि फिलाडेल्फिया वासी के रूप में, क्योंकि तीसरी हाय की तुरही पर 2 साक्षियों पर मुहर लग चुकी होती है और वे अविनाशी में बदल दिए गए हैं, क्योंकि वे फिर कभी पाप नहीं करेंगे। मिलर उन अंतिम लोगों का प्रतिनिधित्व करता है जो वो संदेश प्राप्त करते हैं जो 2 साक्षियों को जीवन देता है, जो इस्लाम की 4 पवनों का संदेश है और वही मुहर लगाने वाला संदेश है। उस तुरही की ध्वनि सदोम और मिस्र की सड़क पर बिखरी पड़ी मृत सूखी हड्डियों में से आखिरी को भी जीवित कर देती है। मिलर देखता रहा कि कैसे सत्य क्रमशः कपटपूर्ण शिक्षाओं के द्वारा दफन किए जा रहे थे। अंततः मिलर रो पड़ा उस समय को चिह्नित करते हुए जब मुहर खोलना आरंभ होना था।
क्योंकि मुहर खोलना एक क्रमिक कार्य है। वो मुहर खोलना 3.5 दिनों के समापन काल में आरंभ हुआ। मिलर के रोने के बाद वो जो मुहरबंद पुस्तक की मुहरे खोलने की शक्ति रखता था वर्णन में प्रवेश कर गया। मिलर के स्वप्न में वो धूल ब्रश वाला व्यक्ति था। इसके बाद मिलर ने प्रार्थना की और तुरंत एक द्वार खुल गया। ये उस बिंदु का संकेत था जहां तीसरे स्वर्गदूत का लाओदीकियाई आंदोलन तीसरे स्वर्गदूत के फिलाडेल्फिया आंदोलन में परिवर्तित होने वाला था। उसकी प्रार्थना लैव व्यवस्था अध्याय 26 की प्रार्थना थी। वो अंतिम भविष्यवाणी रहस्य की समझ के लिए प्रार्थना और उस विद्रोह की सार्वजनिक स्वीकारोक्ति थी जिसके कारण 2 गवाहों पर 3.5 दिनों का काल आया और ये यहेजकेल अध्याय 9 में मुहरबंद लोगों की प्रार्थना थी। प्रार्थना के बाद मसीह धूल झाड़ने वाला व्यक्ति अंदर आए और कमरे की सफाई करने लगे। धूल झाड़ने वाले व्यक्ति के सफाई के काम के अंत में मिलर ने क्षण भर के लिए आंखें मूंद ली, ये पहचानते हुए कि मृत सूखी हड्डियों के पुनरुत्थान की निर्धारित अवधि समाप्त हो गई थी। फिर धूल झाड़ने वाले व्यक्ति ने मिलर के कमरे में बिखरे हुए रत्नों को इकट्ठा किया और उन्हें एक नए बड़े संदूक में रख दिया जो मिलर के कमरे के बीचों बीच एक मेज पर रखा गया था। जबकि 2 साक्षी ध्वज के रूप में ऊंचा उठाए जाते हैं, ध्वज के रूप में वे तब परमेश्वर के दूसरे झुंड को जो अभी भी बाबेल में है ये कहकर बुलाते हैं, आओ और देखो वो संदेश जो यहूदा के गोत्र के सिंह ने अभी अभी नए बड़े संदूक में डाल दिया है। अगले लेख में हम उलाई नदी के दर्शन को उन सत्यों के प्रतीक के रूप में विचारना आरंभ करेंगे जो 1897 में जिसकी मुहर खोली गई दानियल की पुस्तक से प्रकट हुए थे। उस विचार से पहले हमने कुछ संदर्भ बिंदु स्थापित कर दिए हैं। पहला ये कि मिलराइटों का संदेश अपने विकास चरण में सिद्ध था परंतु अपूर्ण था। उसे 3 नहीं 2 उजाड़ मचाने वाली शक्तियों के ढांचे में रखा गया था। दूसरा ये कि जब मिलर का स्वप्न बुनियादी सत्यों की अंतिम पुनर्स्थापना की पहचान करता है तब वे बुनियादी सत्य अपनी मूल महिमा से 10 गुना अधिक उज्ज्वल हो जाते हैं। तीसरा बिंदु ये है कि पहले स्वर्गदूत का आंदोलन सिद्ध का तीसरे स्वर्गदूत के आंदोलन में दोहराया जाता है पर कुछ महत्वपूर्ण अपवादों के साथ। मिलराइट एक प्रतीक के रूप में फिलाडेल्फिया आई थे। वे परिवर्तित नबूकदनेज़र थे परंतु अंततः दुर्भाग्यवश उन्होंने 1863 में यरीहो का पुनर्निर्माण कर दिया। तीसरे स्वर्गदूत का आंदोलन लाओदीकियाइयों के रूप में जिन्हें परिवर्तन की आवश्यकता थी शुरू हुआ परंतु अंततः वे यरीहो के अंतिम विनाश में भाग लेंगे। अंतिम दिनों का यरीहो
उद्धारकर्ता उन बातों को रद्द करने नहीं आए थे जो पितृपुरुषों और भविष्यद्वक्ताओं ने कही थी क्योंकि उन्हीं प्रतिनिधि पुरुषों के द्वारा वे स्वयं बोले थे। परमेश्वर के वचन की सारी सच्चाइयां उसी से आईं, परंतु ये अमूल्य शक्तियों उन्हीं अज्ञाव बहनों के द्वारा गलत संदर्भों में रख दिए गए थे। उनके अनमोल प्रकाश को ब्रह्म की सेवा में लगा दिया गया था। परमेश्वर चाहता था कि उन्हें ब्रह्म के उन संदर्भों से निकालकर सत्य के ढांचे में फिर से स्थापित किया जाए। ये कार्य केवल एक दिव्य हाथ ही कर सकता था। ब्रह्म के साथ अपने संबंध के कारण सत्य परमेश्वर और मनुष्य के शत्रु के उद्देश्य की सेवा कर रहा था। मसीह उसे वहां रखने आए थे जहां वो परमेश्वर की महिमा करे और मानवता के उद्धार के लिए कार्य करे। द डिजायर ऑफ एजेस 287।